जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिथाय गौरनिधाय जय गौरनिधाय। निधाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय स्वात ब्रह्मंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत संस्थापक की इस्कॉन बीबीडी संस्थापक संस्थापक की जय निधाय गौर प्रेमानंदी सामवेद भक्तवृंद की सामवेद भक्तवृंद की सामवेद भक्तवृंद की जय श्री श्री गुरु और गौरांगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आठवां स्कंद अध्याय क्रमांक 9 मोहिनी मूर्ति रूप में भगवान का अवतार, तो आज श्लोक लेंगे 26। शिरस्त्वमतराम नीतिमजो शिरस्त्वमतराम नीतमजो ग्रहमचिकल्कृपतः ग्रहमचिकल्रूपतः यस्तु वर्णानि चंद्रकः यस्तु वर्णानि चंद्रकर्व अभिध्यायति वैरधि अभिध्यावति वैरधि। शिरस्त्वमतां नितमजो ग्रहमचिकलरूपत यस्तु पर्वणि चंद्रकार्वः अभिध्यावति वैरधि। शिरस्त्वमतां नितमजो ग्रहमचिकलरूपतः यस्तु पर्वाणि चंद्रकर्व अभिध्यायवति वैरधि। शिरस्वाग्नाग्निर्ध्वजो ग्रहमचलिकल्कृपतः यस्तु पर्वाणि चंद्रकार्व अभिधावति वैरधि। अजो ग्रहां चिकस्करोतां यस्तु पर्वाणि चंद्रकर्व अभिधावति वैरधि। माताजी शिरस्त्वमतामजो ग्रहमचिकल्कृपतः यस्तु पर्वाणि चंद्रकर्व अभिध्यावति वैरथी शिरः सिर तो वस्तुतः अमरताम अमरता नीतम प्राप्त करके अजह ब्रह्मा जी ग्रहम एक ग्रह के रूप में अचिक्लोरपतम पहचान लिया यह वही राहु तो निसंदेह पर्वणि पूर्णिमा तथा अमावस्या में चंद्र अर्क की चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का अभिधावती पीछा करता है वैरधी शत्रुता के कारण अनुवाद तथा तात्पर्य शिला इसी भक्तिवेदांत संस्कृत की किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है अथ वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य क्योंकि राहु अमर हो गया था इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य या चंद्रमा जैसे एक ग्रह अथवा लोक के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रों में उन पर बारंबार आक्रमण करता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु सीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज जैसे आप लोग नियमित रूप से यहाँ श्रवण कर रहे तो अभी जो यहाँ जो ये चल रहा है जो प्रसंग है कि जो अमृत का जो वितरण हो रहा था तो उसी के मध्यस्थ में राहु और केतु जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके बैठ गए। और जैसे मोहिनी जो है उन्होंने भगवान ने उनको अमृत दे दिया था केवल उनके गले में गया था तो जैसे चंद्रमा और सूरज ने उनकी तरफ इशारा किया कि ये असुर है तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान ने तुरंत उसका गला काट दिया और वहां से मोहिनी मूर्ति जो है वो भगवान अंतर्धान हो गए। तो भी यहाँ जो है बताया गया है कि किस प्रकार जो है उसका केवल ऊपर का भाग जो है वो अमर हो गया बाकी का नीचे निचला जो शरीर है वो ऐसे ही जो है मर के नीचे गिर गया। तो प्रभुपाद जी आधुनिक हमारा जो समाज है कलयुग का जो भौतिक समाज है तो अंग्रेजी में कहते हैं हेडलेस सोसाइटी। हेडलेस सोसाइटी समझते जैसे रामायण में एक राक्षस था जिसका मुंह जो है उसका सर जो है पेट में था। किसी को मालूम है कौन राक्षस था? हाँ कबंद। उसका सर नहीं था। अगर अभी कभी आप जा रहे हैं बाहर अगर एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसका सर नहीं है तो क्या होगा? आप तो डर के भाग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आधुनिक जो समाज है ये बिना सर का है। कहने का अर्थ यह है कि लोगों के अंदर यानी समाज कैसे चलाना है उसका ज्ञान नहीं है। तो समाज चलाने के लिए ब्राह्मण लोग चाहिए, तो एक समाज में चार प्रकार के चार वर्ण है, चार आश्रम है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो शूद्र है। तो रूपा जी बताते हैं कि हम इस्कॉन के द्वारा इस आधुनिक समाज में ब्राह्मण वर्ग का निर्माण करने का प्रयास कर रहे, कुछ लोगों को ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रहे, ताकि वो क्या कर सकते हैं कि लोगों को जो नेता लोग हैं, क्योंकि पुराने जमाने में आप देखते हैं कि चाणक्य जितने भी ये थे, ये लोग क्या करते थे, राजा को जो है ये करते थे, सही मार्गदर्शन करते थे। लेकिन आधुनिक जगत में क्या है कि भागवतम में 12वें स्कंद में बताया है कि किस प्रकार जो शूद्र लोग जो है कलयुग में राज करेंगे, और उसका अभी आप बवाल देख रहे दुनिया में क्या हो रहा है। तो एक न्याय बताते हैं शास्त्रों में, अंध पंगु न्याय। तो आधुनिक समाज क्या है कि उनके पास सब कुछ है, साइंस है, लेकिन है अंधे है। पंगु का मतलब है एक लंगड़ा। तो अभी आप देखते हैं कि दोनों अपने अगर व्यक्तिगत कार्य करना चाहेंगे, दोनों का कार्य विफल होगा। लेकिन अगर अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेता है, तो दोनों क्या कर सकते हैं, जहां उनको जाना है वहां पहुंच सकते हैं। तो उसको कहते हैं अंध पंगु न्याय। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पाश्चात्य देश जो है उनके पास सब कुछ है लेकिन वो अंधे हैं, और भारत क्या है, भारत के पास ज्ञान है लेकिन भारत के लोग क्या है, एक लंगड़े के समान है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने एक उपमा दिया है। तो अभी यहां आप देखते हैं कि खास करके राहु का उल्लेख आता है, तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ज्योतिर्वेद है, तो उसके अनुसार जब ये चंद्र ग्रहण होता है तो राहु जो है वो चंद्रमा को ढक देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो आजकल आधुनिक साइंस जो बताता है कुछ विपरीत है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अक्सर ये जो राहु है ये चंद्रमा को ढक देता है, लेकिन मॉडर्न साइंस का अगर आपको हम बताएंगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। तो मॉडर्न साइंस में वो क्या बताते हैं, सूरज, वो बताते हैं कि पृथ्वी और सूरज के बीच में जो है चंद्रमा आता है, तो वो क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी से ढक जाता है, इसलिए उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। फिर दूसरा वो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण जब भी होता है वो जो है चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, तभी जो है सूर्य ग्रहण होता है, ऐसे आधुनिक साइंस का कहना है। तो अगर आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने पहले एक किताब लिखा था इस्कॉन में स्टार्टिंग में, अन्य ग्रहों की और सुगम यात्रा, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसा देखा जाए कि चंद्रमा जो है सूरज से और ऊपर है, तो वहां जाने के लिए ऐसे जो स्पुटनिक उस समय उन्होंने जो है अपोलो मिशन किया था, तो कह रहे थे कि इतने जल्दी जाके आ नहीं सकते क्योंकि इसका जो है डिस्टेंस काफी लंबा है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हो सकता है ये लोग ये राहु के ऊपर जाके आगे होंगे, हमारे जितने भी वो लोग गए थे उस समय 1967 की बात है। तो अभी यहां जो है खास करके इस श्लोक में जो शाश्वत वैरी का उल्लेख आता है, तो यहां ये बताया गया है कि चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी, तो इसका उल्लेख भगवद गीता में भी आता है 3rd अध्याय में। तो भगवान बताते हैं 3rd अध्याय में, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणाम लेनच। तो यहां भगवान बता रहे इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु ढकती रहती है जो कभी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। तो अभी अगर यहां देखते हैं कि हमारा जो अनर्थ है, जो 6 अनर्थ है, तो इसमें जो है काम जो है एक व्यक्ति की जो काम वासना है तो उस व्यक्ति की बुद्धि को ढक देता है। तो अगर ऐसा देखा जाए कि मन से बढ़कर हमारी बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर क्या है, आत्मा है। तो लेकिन ये हमारा जो बुद्धि है, जो काम वासना है, वो कभी कभी क्या है कि हमारी बुद्धि को और आत्मा को जो है वो प्रताड़ित कर देती है। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, काम प्रेम दोनाकार विभिन्न लक्षण लहो आर हेम याचे स्वरूप लक्षण। तो यहां बताया गया है कि काम और जो है प्रेम है, इसके दोनों के अलग अलग स्वभाव है। जिस प्रकार जो लोहा होता है और सोना होता है, ये दोनों अलग अलग जो है, दोनों अलग चीज है। तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा का भगवान के प्रति जो प्रेम है, तो जीवात्मा जब भी इस भौतिक जगत में आ जाता है, वही जो प्रेम है वो काम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी वर्षा का मौसम है, तो जो बारिश का जो पानी गिरता है ये शुद्ध होता है। आजकल थोड़ा केमिकल से एसिड वगैरह होगा, तो वर्षा का पानी ऐसे देखा जाए शुद्ध होता है, लेकिन जब वो जमीन पर गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वो पानी बिल्कुल मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसी प्रकार जीवात्मा जो है, चैतन्य चरितामृत में और एक श्लोक आता है, कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया देह संसार दुख। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि जो जीवात्मा है वो भगवान को भूल गया है। तो कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख, बहिर्मुख समझते हैं, एक है अंतर्मुख। जब भी आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो उसको कहा जाता है अंतर्मुख, और जब भी आप अपना ऐसे देखा जाए तो मंदिर से ऐसे मुंह सामने करते करते पीछे आना चाहिए, लेकिन हम लोग बहिर्मुख हो जाते हैं, पलट देते हैं। तो बहिर्मुख का अर्थ है कि जीवात्मा अनादि काल से भगवान से वो दूर होके इस भौतिक जगत में वो क्या कर रहा है कि अपना एक संसार बसाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर इस लीला का अगर हम देखते हैं, अगर इस लीला का ये जो लीला समुद्र मंथन लीला है, तो इसका जो कंक्लूजन है अंत में बताएंगे, तो इसमें से दो प्रकार के चीज प्रकट हो गए। ऐसे तो 14 प्रकार के चीज प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, अंत में अमृत आया था, लेकिन ये जो असुर और जो देवता इनके समाज में दो चीज प्रकट हो गए, एक समाजवाद और दूसरा एक है पूंजीवाद, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भगवद्गीता में भगवान बताते हैं जो ये काम वासना क्या है, कि एक व्यक्ति की जो है ये उसका दुश्मन है, शाश्वत दुश्मन है। 16वें अध्याय में भी एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें भगवान बताते हैं, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्माद एतम त्रयम तजेत। तो भगवान बता रहे कि इस नरक को तीन द्वार है, क्या है, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का भी पतन होता है। तो आत्मा का पतन का मतलब है कि ये जो है हमारे जो अनर्थ है, तो इसको षड गर्भ भी कहा जाता है। भागवतम में बताया गया है कि देवकी के जो 6 पुत्र थे जिसका कंस ने वध किया था, तो ये हमारे षड गर्भ यानी 6 अनर्थों का जो है प्रतीक है। तो रूपा जी लिखते हैं कि भौतिक जगत में जिसका भगवान के साथ ये नहीं मिलता है विचारधाराएं, जैसे एक गाना है, मिले सुर हमारा तुम्हारा, तो जिसका भगवान से सुर नहीं मिलता है तो वो क्या है, हाँ असुर है। तो इसका उल्लेख भगवद गीता के जो है 16वें अध्याय में भगवान, और एक श्लोक है, दौ भूत सर्गे लोकोस्मिन दैव असुर एव च दैवे विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थ श्रुणु। भगवान बता रहे कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हर समय पाए जाएंगे, भक्तों में भी दो प्रकार है, हाँ, एक जो है शैवाइट्स है और एक है वैष्णव लोग हैं। तो यहां दो प्रकार के लोग क्या भगवान बता रहे कि संसार में सृजित प्राणी में दो प्रकार है, यानी मनुष्य में दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही भगवान बता रहे कि आपको दैवी 16वें अध्याय में पहले भगवान ने जो है दैवी 26 गुण बताए, उसके बाद में असुरी व्यक्तियों का लक्षण बताया है, तो उसका केवल अभी अनुवाद पढ़ के बताएंगे। तो भगवान बताते हैं कि ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो यहां तो तात्पर्य में रूपा जी लिखते हैं अनुवाद में, आसुरी व्यक्ति सोचता है, अगर आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो मन है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंद मोक्ष, तो आसुर व्यक्ति का सोचने का विचार क्या है देख लो, उसके विचारधाराएं क्या है। आसुर व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, आजकल हम देखते हैं कि जितने भी शहरों में रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में, ठीक है, सबका स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया रहता है, ठीक है, और अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा, तो वो सोचते कि अभी हम आगे और बहुत कुछ कमाएंगे, तो इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया है, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। हाँ, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी हूं और मैं मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी है, यानी वो असुरी व्यक्ति के जो है परिवार के संगी, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त में रहते हैं। तो यहां भी आप देखते हैं कि जो समुद्र मंथन लीला हुई तो उसमें भी सबसे बड़ा अज्ञान क्या था देवताओं के अंदर और असुरों के अंदर, कि अगर हम अमृत पिएंगे तो हम शाश्वत जिएंगे। तो यक्ष प्रश्न में भी हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भी पूछा गया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अत्परः। तो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जीवित है, खास करके अज्ञानी है, ये असुरी विचारधारा वाला है, तो उसको क्या लगता है कि हम यहां बने रहेंगे, तो ये सबसे बड़ा जो है इस दुनिया का आश्चर्य है। तो हमारे जो छह अनर्थ है, तो भागवतम में हम देखते हैं कि चौथे स्कंद में जब ये चतुष्कुमार वो वैकुंठ गए थे, उन्होंने जय विजय को श्राप दिया था, तो जय विजय जो है उनको तीन बार जन्म लेना पड़ा सत्ययुग त्रेता द्वापर में। तो पहले वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में आए, फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो अभी ये तीन बार इन्होंने जन्म लिया, तो ये हमारे छह अनर्थों के प्रतीक है। अगर संक्षिप्त में देखते हैं कि रावण, तो आज का जो टॉपिक है शाश्वत वैरी। शाश्वत वैरी का मतलब है कि हमारा नित्य, कि हमारा जो है ये सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है काम वासना। तो वृंदावन के लीला में भी आप देखते हैं कि बलराम जी ने एक असुर का वध किया था भांडिर वन में। किसको मालूम है कौन सा असुर था? प्रलंबासुर। हाँ, प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर जो है, भक्तिविनोद ठाकुर जो है चैतन्य इसमें शिक्षामृत में बताते हैं कि वृंदावन में जितने भी असुर आए थे तो हर एक असुर का कुछ ना कुछ एक ये अनर्थ है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हर एक की कुछ ना कुछ अलग अलग बीमारी निकलेगी, हर एक की एक प्रकार की बीमारी नहीं होती है, कोई सीजन में हो सकता है। तो ये वृंदावन में जितने भी असुर आए थे कृष्ण भगवान को मारने के लिए, तो हर एक असुर का कोई ना कोई अनर्थ बताया है। तो ये प्रलंबासुर का जो अनर्थ बताया है ये भौतिक काम वासना, भौतिक, इसमें दो प्रकार है भौतिक और उसमें एक है सूक्ष्म। तो हमारे शरीर के तीन अंग है, वो जो सूक्ष्म है, शरीर पांच तत्वों से बना है, उसी प्रकार ये काम वासना का मतलब है कि इस शरीर को सुबह उठने के बाद रात को जब तक ये सो नहीं जाता है, बस इसको जो चाहिए इसको देते रहो, जो भी इसको भोग चाहिए वो देते रहो, तो उसको कहते हैं शारीरिक काम वासना। और जो सूक्ष्म काम वासना जो है, समाज में जब हम लोग रहते हैं तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अगर समाज में जब हम रहते हैं तो हर एक व्यक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना करता है। तो ये काम वासना अगर आप देखते हैं, इसको नित्य वैरी कहा जाता है, ये हमारे मन के साथ अटैचमेंट फाइल कहते हैं ना कंप्यूटर में, तो ये इसके साथ ही रहेगा, कभी इससे इसको मुक्त करना मुश्किल है जब तक हम आध्यात्म के ज्ञान में नहीं आते। तो ऐसे अकबर बीरबल की कहानी में एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था, क्या ऐसे एक समय कोई कभी आएगा एक व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो सकता है क्या? तो बीरबल ने कहा था कि जब तक उसको आध्यात्म ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति मरते दम तक उसकी काम वासना से वो मुक्त नहीं होगा। तो दूसरा अनर्थ है, सीरियल में हम चलते हैं, क्रोध। तो क्रोध का प्रतीक है दंत वक्र। अगर आप देखते हैं कि जब शिशुपाल का भगवान ने वध किया तो दंत वक्र इतना आग बगुला हो गया कि बिना कोई अस्त्र का आया था भगवान के पास युद्ध करने के लिए। तो आप देखते हैं कि काम का ये छोटा भाई है क्रोध, काम वासना का ही छोटा भाई है क्रोध. फिर तीसरा जो है लोभ. तो आज की दुनिया में हम देखते हैं कि सब जगह लोभ ही लोभ है. तो ये लोभ का प्रतीक है हिरण्याक्ष. तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का पूरा सोना इकट्ठा किया था. तो आजकल सोने की कीमत आप लोग जानते हैं कि नहीं, सोना पहनना भी बहुत खतरनाक है. तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी का पूरा सोना निकाल के पृथ्वी को रसातल में डाल दिया था. तो उसके बाद में चौथा है हिरण्यकशिपु. तो हिरण्यकशिपु जो है वो अहंकार का प्रतीक है. तो आज इस दुनिया में कोई भी नहीं सोचता है कि चलो नम्रता से जीवन व्यतीत करते हैं. हर एक व्यक्ति के अंदर एक अहंकार है, हमसे बढ़कर कौन. कोई व्यक्ति अपने आप को कम नहीं समझता है. तो कोई देश हो, समाज हो, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो है वो अहंकारवश. तो ये हमारा एक मिथ्या अहंकार है. जो सच्चा अहंकार क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा सच्चा अहंकार है. तो मिथ्या अहंकार के कारण एक व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है. तो हिरण्यकशिपु क्या लगा था कि ब्रह्मा जी ने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दिए हैं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे हिरण्यकशिपु को लग रहा था. फिर मोह का प्रतीक है कुंभकर्ण. आप देखते हैं कि कुंभकर्ण एक दिन में पता नहीं कितना खा लेता था, फिर 6 महीना सो जाता था. तो आजकल ऐसी दुनिया है कि लोग खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते. अगर एक सर्वे किया जाए तो हमारा पेट कितना है किसी को मालूम है, अंगुष्ठ मात्र, यानी ये हमारा जो मुष्टी है. लेकिन जब भी प्लेट आगे रखते पता नहीं सब कुछ अंदर चला जाता है कि नहीं. तो ऐसे देखा जाए तो जो है कुंभकर्ण जो है वो इतना खा लेता था, पता नहीं उसका कुछ डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा नहीं. तो आजकल भी लोग भी ऐसे ही कि काफी लोग हैं वो खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते. तो हमारे गांव में मेरी दादी माँ बताती थी, जब भी शादियां होती थी एक व्यक्ति थे वो हर एक शादी में जाते थे, भरपेट खाते थे, पूरे पंगत फर्स्ट से एंड तक खाते रहते थे. तो एक बार ऐसी किसी शादी में से खा के आए रात को, तो इतना पेट फूल गया, सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही थी. तो चिल्ला रहे थे मैं मर रहा हूं. तो घर वाले इकट्ठे हो गए, अरे क्या हो गया. वो कह रहा था कि मुझे मरने का दुख नहीं है, मैं भूखा नहीं मर रहा हूं, मैं ज्यादा खा के मर रहा हूं. तो ऐसी दुनिया है आजकल, लोग ज्यादा खा के मरते, भूखा कोई नहीं मरता है. तो किसी को मालूम है रांति देव ने कितने दिन का उपवास किया था? हाँ जी, हाँ, रांति देव ने 48 दिन उपवास किया था. तो हमारे शरीर में कितने दिन का राशन स्टॉक होता है, राशन यानी ताकत. एक व्यक्ति बिना भोजन के कितने दिन रह सकता है, किसी को मालूम है? अभी हाल ही में एक देश है टर्की, उसका नाम भी बदल गया, अभी टर्की ये बोलते, पहले उसका नाम था टर्की. तो वहां ऐसे भी लोग पाए गए जो नीचे मलबे में मिले, 7 दिन तक एक व्यक्ति जिंदा मिला, 7 दिन. हाँ, उसको पानी भोजन कुछ नहीं था, केवल सांस ले रहा था, फिर भी वो व्यक्ति जिंदा रहा. तो अभी चलो ऐसे एक व्यक्ति पानी पर 15 दिन आराम से रह सकता है, ठीक है. तो जैसे राम भगवान का नवरात्र होता है, रामनवमी, उस समय काफी लोग जो है 9 दिन का उपवास भी करते हैं बिना अनाज खाए, जो भी है. तो कुंभकर्ण जो है वो मोह का प्रतीक है. और अंत में ईर्ष्या. तो ईर्ष्या का प्रतीक कौन है, वो है शिशुपाल. और आप देखते हैं कि शिशुपाल जो है वो, जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक सांप है वो खल है, खल समझते हैं, ईर्ष्यालु है. लेकिन सांप के लिए मंत्र भी है और दवा भी है. लेकिन सांप से भी खतरनाक है वो 2 पैरों का मनुष्य, उसके लिए कोई न मंत्र न तंत्र न यंत्र कुछ भी नहीं है. अभी एक ऐसा एक देश है फ्रांस, वहां उन्होंने कुछ साल पहले कुछ लोगों को शरणार्थी करके अपने देशों में रख लिया. तो लेकिन उन्होंने कल 3 दिन में ही पूरे देश को जला डाला, पूरे देश को, है ना, इतना वहां बर्बादी की केवल 3 दिन में. तो आज हम समझ नहीं सकते कि एक दुश्मन वो कब क्या कर सकता है. तो ये हमारे 6 अनर्थ है. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन का जो संगठित किया था, इस्कॉन की संस्था का स्थापना किया था, तो पहले प्रभुपाद जी ने झांसी में इस्कॉन का निर्माण किया था 58 में, 58. उसके बाद में जब 65 में अमेरिका में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, तो उसमें से ये जो अभी इस दुनिया में जो दुविधा चल रही है इसमें से लोगों को मुक्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के सात उद्देश्य बताए थे, ठीक है। तो ये सात उद्देश्य में से आज आपको हम तीन उद्देश्य संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। पहला है, थोड़ा सब लोग सतर्क होके सुन लो, संपूर्ण मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित रूप से वितरण करना एवं सारे मानवता को, मानवता के असंतुलन को एक कर सारे विश्व में शांति और एकता बनाए रखना। तो यहां क्या बताया गया है, संपूर्ण मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित रूप से वितरण करना। तो आज क्या है कि संपूर्ण समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का ये नहीं है। रूपा जी कहते हैं कि अज्ञान के कारण ये सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। और एवं सारे मानवता के असंतुलन को, मानवता में जो ये है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई एक करोड़ कमा लेता है, कोई सौ रुपए भी नहीं कमा सकता है, तो सारे विश्व में शांति और एकता बनाए रखना। तो अगर आप देखते कि जैसे कहते नहीं कि सबको एक स्तर पर ये करना चाहिए आदान प्रदान लोगों के साथ, लेकिन जब ये धन धन का ये आता है तो जितना एक व्यक्ति ज्यादा पैसा देगा उतना ही उसको ज्यादा ये मिलेगा इस दुनिया में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट रूपा जी बताते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा कि विश्व में एक शांति हम बनाए रख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट रूपा जी बता रहे हैं, अखिल मानवता को आध्यात्मिकृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्य करना है। तो अभी आप देखते हैं जैसे हम लोग रथ यात्रा करते हैं, किताब वितरण करते हैं, तो इससे क्या होता है कि भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं तो उनके अंदर जो है एक शांति बनाए बनी रहती है। तो अगर आप रूपा जी कहते हैं कि कलयुग में जितना हम लोग कीर्तन करेंगे उतना ही शांति बना रहेगा, तो रूपा जी 1971 की बात करते हैं तो बता रहे थे कि वो कहते हैं कि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था, लेकिन उस समय रूपा जी यहां थे हैदराबाद में। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ भक्त यहाँ ये प्रचार कार्य कर रहे, हो सकता है इसके कारण ये युद्ध जल्दी टल गया। तो यहां सेकंड पॉइंट में बताया गया है, अखिल मानवता को आध्यात्मिकृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्य करना, सत्य और भ्रम। अभी सत्य क्या है और भ्रम क्या है, जड़ और चेतन, शरीर क्या है, जड़ है, आत्मा चेतन है, और इसका ज्ञान प्रदान करना। तो आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या समझता है, मैं ये शरीर हूं, लोगों को चेतना का यानी आत्मा का ज्ञान है नहीं। फिर तीसरा, नित्य और अनित्य, नित्य क्या है अनित्य क्या है का भेद लोगों को समझाना, और भौतिकतावाद के दोष और उसके प्रतिक्रियाओं को लोगों को समझाना। तो आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में क्या है कि भौतिकतावाद इतना बढ़ गया है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर आप देखते हैं कि अभी वृंदावन में इतने यात्री आ रहे तो हर एक व्यक्ति को बॉटल का ही पानी पीना है। समझो अभी गुरु पूर्णिमा हो रही है, 20 लाख लोग आएंगे तो समझो 10 लाख लोगों ने भी एक एक लीटर पानी पी लिया, तो वृंदावन में कितना कचरा होगा, हाँ 1 लाख प्लास्टिक के बॉटल जमा होंगे, उसको इकट्ठा कौन करेगा, उसको कचरे के इसमें उसको उसका जो है दूसरे रूप में परिवर्तित कौन करेगा। तो अभी आप समझो 20 लाख लोगों के लिए पेपर ग्लास में हम लोग शरबत देते हैं या प्लास्टिक ग्लास में जो भी भोजन वगैरह परोस रहे उसकी कितनी गंदगी हो रही है। तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि भौतिकतावाद इतना बढ़ गया है कि पहले जमाने में लोग अपना प्लेट और ग्लास लेके चलते थे जहां भी जाते थे, शादियों में भी लोग जो है अपना खुद का ग्लास और प्लेट लेके जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बस वो एक ऐसा फैशन आ गया है कि आजकल लोग मूर्खता वो 56 भोग भी शादियों में 56 भोग रख रहे। अभी ऐसे भी लोग हैं कि आधा लेके आधा फेंक रहे, तो ये एक बड़ा भौतिकतावाद है। तो इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी का शोषण हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि 24 गुरुओं के अंतर्गत ये बताया है कि जो ये थे जो अवधूत ब्राह्मण थे तो उसने 24 लोगों को अपना गुरु बना लिया। तो उसमें पहले है पृथ्वी, तो पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा, सहनशीलता। अगर आप देखते हैं कि इस पृथ्वी अभी इतनी सहनशील है कि हम लोग इतना बवाल कर रहे, तो इस दुनिया में अभी जो भी हो रहा है चाहे वो प्रदूषण हो कुछ भी हो, ये केवल मनुष्य ने किया है, तो इसका हमें रिएक्शन तो आना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हमने कुछ किया नहीं हमको नहीं आएगा, क्योंकि हम समाज में रह रहे तो उसका रिएक्शन जो पाप नहीं कर रहा है उसको भी मिलने वाला है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिकतावाद के दोष और उसके प्रतिक्रियाओं को लोगों को समझाना, तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि जो लोग वृंदावन तीर्थ यात्रा करने आते हैं तो लोगों को बताना चाहिए कि तीर्थ यात्रा करने का मतलब क्या है। जैसे आप कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर को हाथ मिलाने जाते हैं क्या, उसको बाय बाय करने जाते? नहीं, तो हॉस्पिटल हम जाते हैं एक बीमारी से मुक्त होने के लिए। तो तीर्थ यात्रा का मतलब ये नहीं कि यहाँ जा आके गोलगप्पे खाओ और बस डांसिंग करो, अपना एक सेल्फी ले लो, ये तीर्थ यात्रा का मकसद नहीं है। तीर्थ यात्रा का मतलब है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति को उसके द्वारा अपने भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उसके द्वारा जो भी जाने अनजाने में जो पाप होते हैं तो उससे उसको मुक्त होने के लिए उसको एक प्रायश्चित करना होता है। जैसे भागवतम में छठे स्कंद में आप देखते हैं कि जब अजामिल को पकड़ के ले जाने वाली थे यमदूत, तो चार विष्णुदूत आए, उन्होंने तुरंत रस्सी काट दिया, बोला ये अभी पाप से मुक्त हो गया। लेकिन यमदूतों ने कहा अरे इसने तो पूरे जिंदगी भर पाप किया है, इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया। तो जो भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाता है ये कोई टाइम पास नहीं है। आज आप वृंदावन में देखेंगे सब जगह दुकान ही दुकान, सब लोग शॉपिंग करने आते हैं, ए सी होटल चाहिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ी से घूमना है, ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, ये तो हम अपना पाप बढ़ा रहे हैं। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति खास करके धाम के भी 10 अपराध बताए जाते हैं, तो जो व्यक्ति धाम में आके जो भी पाप कार्य करता है तो उसका उसको 100 गुना अधिक पाप लगेगा। तो ये भी अंग्रेजी में कहा होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, अगर हम कोई चीज के बारे में अगर अज्ञानी है तो जैसे बिजली के इसमें हमने हाथ डाल दिया तो हमें करंट तो लगेगा। अभी हाल ही में क्या हो गया कि कहीं एक रथ यात्रा हो रहा था, गलती से वो बिजली के खंभे में टच हो गया, तो ऐसे बता रहे थे कुछ 15 लोग गुजर गए। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हम हमारे द्वारा जो भी हम गलतियां कर रहे हैं तो प्रकृति उसका हमें दंड तो देगी। चलो जो भी है, तो यहाँ जो हम अमृत मंथन लीला सुन रहे हैं तो चाहे देवता हो या असुर हो तो वो लोग क्या आनंद लेना चाहते हैं कि नहीं? तो वेदांत सूत्र में एक श्लोक आता है आनंदमय अभ्यासात, वेदांत सूत्र में एक श्लोक आता है तो उसमें बताया गया कि आनंदमय अभ्यासात का मतलब है कि जो जीवात्मा है वो क्या है, सच्चिद आनंद है, तो वो भी आनंद लेना चाहती है चाहे कोई भी योनि में है। अगर आप देखते हैं जैसे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं या बंदरों के बच्चे हैं, आप कहीं भी जाओ बच्चे आप देखते हैं कि खेलने में मस्त रहते हैं। बालावस्थ क्रीड़ा आसक्त, तरुणावस्थ तरुणी आसक्त, वृद्धावस्थ चिंता मग्नम, बुढ़ापे में अगर वृंदावन में आप जितने भी बूढ़े बंदर देखेंगे बिल्कुल शांति से ऐसे लगते बड़े कोई महान योगी है कि नहीं? वैसे भी मनुष्य भी जब भी बूढ़ा हो जाता है, अंगम गलितम फलितम दशवने हीनम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम, तो जो भी है तो आप देखते हैं कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति आनंद लेना चाहते हैं। जैसे फौज में एक व्यक्ति 58 या 60 साल में रिटायर हो जाता है फिर भी उसको जवान कहा जाता है, क्यों? हाँ, जवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो जवान है। हमारी जो आत्मा है उसका कोई वैल्यू बिगड़ता नहीं, आत्मा जो है सच्चिदानंद है, वो शाश्वत है। तो इसलिए वेदांत सूत्र में एक कथन है आनंदमय अभ्यासात। अभी आप बताओ इस दुनिया में कौन आनंद नहीं लेना चाहता है, लेकिन वास्तविक सच्चा आनंद लेना है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके कारण इस दुनिया में जो है लोग जो है वो दुख में है। तो एक सच्ची घटना है 1972, अभी 51 साल हो गए, तो एक व्यक्ति थे अमेरिका में, बहुत धनी व्यक्ति थे। तो जब वो गुजरने वाले थे डॉक्टर ने कहा कि देखो अभी हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, आप अगर मर भी जाएंगे आपको हम जिंदा करेंगे। प्रभुपाद जी कहते पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड का चेक मतलब कि मैं आपको चेक देता हूं, मेरे बैंक में से आपको पैसा मिलेगा आगे जब पैसा आएगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वॉल्ट डिस्नी, तो इस दुनिया के बहुत बड़े वो चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे। तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा था कि साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने, अगले 50 साल में कोई भी व्यक्ति मर जाएगा हम उसको शाश्वत जिंदा कर देंगे। तो इसके ऊपर एक पिक्चर भी निकला था फ्रैंकेस्टीन करके, एक अमेरिका में एक जो है हॉलीवुड करके है, उन्होंने एक पिक्चर बनाया था। तो एक कोई साइंटिस्ट था, तो उसने सोचा चलो हम मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हैं। तो उस स्मशान में जाके उसने एक लाश को ला के अपने लेबोरेटरी में उस व्यक्ति के शरीर में कुछ फुर्जे डाल दी, छोटे छोटे चिप्स वगैरह डाल के उस व्यक्ति को जिंदा कर दिया। तो उस व्यक्ति ने ऐसे बवाल मचाया कि वो जिंदा सचमुच जिंदा हो गया जब ये नहीं था। तो कहने लगा अरे बताओ किसने मुझे जिंदा किया, मुझे किसने पैदा किया। जाके पूरे जो है शहर का उसने सत्यानाश कर दिया। तो ऐसे हमें मालूम होना चाहिए कि आज साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ जो है वो एक दूसरे को तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रूपा जी बताते हैं कि साइंटिस्ट लोग एक चींटी भी बना नहीं सकते, एक घास का तिनका भी नहीं बना सकते। तो ऐसे देखा जाए कि अगर आप देखते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ है ये प्रकृति का बनाया हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वश अहंकार मूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये व्यक्ति के गुजरे हुए 50 साल हो गए। पिछले साल एक न्यूज़पेपर वाले ने पूछा अरे ये डॉक्टर लोगों ने कहा था कि हम मरे हुए आदमी को जिंदा करेंगे, वो कहाँ गए सब डॉक्टर? तो किसने कहा वो सारे डॉक्टर लोग भी मर गए। समझ में आ रहा है ना? तो प्रूपा जी बताते हैं कि उस समय 1967 में जो अमेरिका वाले कह रहे थे कि अभी हम चांद के ऊपर पहुंच गए, तो 5 एस्ट्रोनॉमर्स थे, उसमें एक व्यक्ति थे उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। तो कह रहे थे कि ये पहला मानवता का पहला चंद्र का चंद्रमा के ऊपर पहला जो है पैर रखा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति भी गुजर गया। आज इस दुनिया में कोई चंद्रमा के ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या हो गया? तो ऐसे उस समय अमेरिका वालों ने $270 ट्रिलियन खर्चा किया। वो कहते कि ये पूरा पूरा पानी में चला गया। तो चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकली अशांत। तो जो भक्ति कर रहे है भगवान के भक्तों को कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, चार प्रकार के लोग है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। तो ये देवता लोग है और असुरी लोग क्या है, ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी वाले ही है। हालांकि देवता लोग भी जो है अगर आप देखते हैं जितने भी इंद्र चंद्र वरुण वायु इनके अलग अलग लोग हैं, देवता लोगों के भी अलग अलग लोग हैं, वहां वो लोग अपना ऐश का जिंदगी जी रहे। तो यहां बताया गया है कि ये सकली अशांत यानी ये लोग शांत नहीं है। तो भागवतम में हम देखते हैं कि इतने सारे लीलाएं हैं जहां आप देखेंगे इंद्र कभी शांति से, इंद्र के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इंद्र शांत नहीं है। कोई भी अगर यज्ञ कर रहा है अगर उसके 100 यज्ञ होने वाला है तो इंद्र को मिर्ची लग जाती है कि नहीं, अभी किसी प्रकार इसका जो है हमको ये यज्ञ से इसको ये करना है, विफल करना है। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं वो क्या है कि भोग भौतिक भोग में लगे हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में ये समुद्र मंथन लीला में एक श्लोक आता है, वैसे एक सिमिलर श्लोक है वो है 10वें दशम स्कंद में। तो वो श्लोक को हम आपको पढ़ के बताते हैं, मिथ कलेर अभूत तेषाम तदर्थे तरस तेषताम अहम पूर्वम अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभो। ये है 8वां स्कंद 8वां अध्याय, पिछला अध्याय था 38 नंबर श्लोक। यहां क्या बताते हैं असुरी लोग, देखो तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे, हे राजा तब असुरों के बीच झगड़ा छिड़ गया कि सबसे पहले कौन अमृत लेगा। उनमें से हर एक ने यही कहने लगा, हर एक व्यक्ति यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, तुम नहीं पहले हम। ऐसे भी कहते ना, पहले हम पहले हम पहले आप पहले आप। और एक बहुत सुंदर श्लोक है अभी, ये ग्वाल बाल, ये है अगासुर लीला में 10वां स्कंद 12वां अध्याय 6वां श्लोक। कितना सुंदर श्लोक है देख लो, ये भी वैसे ही है, यदि दूरम गतो कृष्ण वनम शोभेक्षणायम त अहम पूर्वम इति संस्वर्च रे मिरे। तो यहां भी क्या है, अहम पूर्वम, यहां जो ग्वाल बाल भी कह रहे कि मैं पहले किसके लिए कह रहे। कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते थे तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए यह कह के सदैव आगे दौड़ते थे। दौड़कर कृष्ण को छूने वाला बालक कहता था मैं कृष्ण को सबसे पहले छूंगा। इस तरह वे कृष्ण को बारंबार छू छू कर जीवन का आनंद लेते थे। तो अगर यहां देखो कितना फर्क है, यहां एक तरफ जो है समुद्र मंथन लीला हो रही है, वहां देवता लोग बिल्कुल ये हो गए, क्या हो गए, मैंने बड़े दुखी हो गया, अभी हमारे हाथ से अमृत निकल गया। तो असुरी लोग जो है वो सोच रहे थे कि हम पिएंगे। तो इस लीला का जैसे मैंने आपको बताया कि निष्कर्ष क्या है आज इस दुनिया में, वो है समाजवाद और पूंजीवाद। तो समाजवाद का मतलब है जो चाइना है, रशिया है, तो ये देश क्या है कि वो कहते कि सबके लिए सबको भोग करने का अधिकार है, उसको कहते हैं समाजवाद। पूंजीवाद का मतलब है कि ये पाश्चात्य देश अमेरिका यूरोप, इनका क्या है कहना है कि तुम जितना कमाना अपना कमाओ, तुम जितना यश करने का करो, तो ये क्या है कि पूंजीवाद। तो इस लीला में भी भगवान ने जो है, जब भी देवता लोग भगवान के पास गए थे तो भगवान ने उनको एक उदाहरण दिया था, उसको कहते हैं असी मुषिक न्याय। आपने किसने बताया असी मुषिक न्याय, इस लीला के अंतर्गत किसने बताया होगा असी मुषिक न्याय। तो असी मुषिक न्याय का मतलब है कि एक बार गांव में हम देखते हैं कि सब्जी की जो टोकरी लटका के रखते हैं घर में, तो उस टोकरी में एक बार क्या हो गया, एक सांप फंस गया उस टोकरी में। तो कुछ समय के पश्चात क्या हो गया कि उस टोकरी में एक चूहा आ गया। तो जैसे चूहे ने सांप को देखा बिल्कुल डर गया, अरे, तो सांप ने कहा अरे डरो मत, देखो तुम एक छेद कर दो मैं निकल जाऊंगा, बाद में तुम भी निकल जाना। तो चूहे ने डर डर के सुराख बना दिया और क्या हो गया कि सांप बाहर जाके बस खड़ा हो गया, वो देख रहा था चूहा आने वाला है। जैसे चूहा बाहर आ गया खा गया उसको, तो इसको कहते हैं असी मुषिक न्याय। सो जब ये सारे देवता जो है भगवान के पास गए थे तो भगवान ने कहा शांति से रहो, कोई टेंशन मत लो, कूल, बिल्कुल शांति से रहो, वो जो भी बोलेंगे बोलो यस यस यस, में हाँ मिलाते जाओ, हाँ जब अमृत आएगा तो हम आगे प्रयास करेंगे आपको कैसे बांटने का। तो यही हो गया। तो भगवान ने क्या किया, मोहिनी का रूप धारण किया और सारे देवताओं को अमृत पिला दिया। आप देखते हैं उनका क्या गोल एक ही था, अमृत प्राप्त करना, उद्देश्य एक था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो गया, देवताओं को अमृत मिला, असुरों ने केवल श्रम एव केवलम, श्रम एव केवलम समझते ना, केवल उन्होंने परिश्रम किया, इतना सारा भाग दौड़ किया, तो लेकिन उनको जो वास्तविक अमृत जो मिलना है वो नहीं मिला। तो इस भौतिक जगत की यही सिचुएशन है। प्रूपा जी बताते हैं, एक मॉर्निंग वॉक में प्रूपा जी बता रहे थे, तो एक शहर में प्रूपा जी अपने शिष्यों के साथ एक गार्डन में टहल रहे थे, बहुत बढ़िया गार्डन था और बहुत बहुत बड़ा गार्डन था, और बगल में ही जो है बड़ा ट्रैफिक जाम, सब हॉर्न बजा रहे थे। तो प्रूपा जी ने अपने शिष्यों को कहा देखो ये लोग जो है इतना बढ़िया गार्डन बनाते हैं लेकिन एक खुद लोग यहाँ गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ सकते हैं। इनको पैसा कमाने के लिए सुबह सुबह निकलना है घर से। तो अभी देखते हैं कि कोई भी शहर में देखो सुबह मंडे से सैटरडे तक सुबह 7 बजे से दोपहर को 1 बजे तक वो ट्रैफिक चलता रहता है, चाहे वो लोकल ट्रेन हो या रोड हो, चाहे वो आपका दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, कोई भी है, लोग जो है ये केवल पैसा कमाने के लिए अंधे होके जाते रहते हैं। लेकिन प्रूपा जी कह रहे थे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बस बाद में जाके हम क्या करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, उसके बाद में बस प्रसाद लेंगे। तो इस प्रकार प्रूपा जी एक लेक्चर में बताते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रूपा जी का एक मॉर्निंग एक लेक्चर है, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्य। तो उसके अंतर्गत प्रूपा जी बताते हैं कि माया इस भौतिक जगत में दैवी एष गुणमयी। तो प्रूपा जी बताते हैं कि माया हरदम जीवात्मा को अपने काबू में रखना चाहती है। जैसे जेल होते हैं, बड़े बड़े दीवार होते हैं, कोई जेल से बाहर जा सकता है नहीं। तो प्रूपा जी बताते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान से जो बहिर्मुख हो गए तो उनको अच्छी उनकी पिटाई की जाए, तो इसलिए माया क्या करती है, वो प्रलोभन देती रहती है। माया के दो अस्त्र है, किसी को मालूम है माया के दो अस्त्र क्या है, एक आवरणात्मक शक्ति है और एक प्रक्षेपात्मक शक्ति। आवरणात्मिक शक्ति का मतलब है कि आपके ज्ञान को ढक देगी, जैसे आपको आपने आंख मिचोली, भगवान की एक लीला है वृंदावन की लीला, आंख मिचोली, तो अगर आंख में पट्टी बांध दिया जाए तो क्या होगा, हमें आप आगे क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सुअर है, तो सुअर का भगवान ने सुअर को एक ऐसा बुद्धि दिया है कि चलो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चलो, भगवान कहते हैं कि सुअर को तुम जितना खाना खाओ, तो उस भगवान ने उसकी बुद्धि ऐसी बना दी है कि सुअर को आप कितना भी समझाओ, इधर कोई है सुअर को समझा सकता है क्या, आप क्या खा रहे हैं, कोई है तो मुझे बता दो, चलो जो भी है। तो यह आवरणात्मिक शक्ति। प्रक्षेपात्मिक शक्ति का मतलब है कि जब हम भक्ति में भक्ति करने चले जाते हैं तो माया कहती है अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो तुम जवान हो, थोड़ा कुछ कमा लो, उसके बाद में भक्ति देखा जाएगा, है कि नहीं। तो उसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिक, यानी थोड़ा दूर। प्रक्षेपात्र का मतलब है जो ये करते हैं आजकल बड़े बड़े मिसाइल्स वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं प्रक्षेपात्र। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग तीन गुणों से बंधे हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर आप देखते हैं कि महाभारत रामायण में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये तीनों भाई थे, लेकिन वो अलग अलग गुणों से आवृत थे। रावण जो है वो रजोगुण से प्रभावित था, कुंभकर्ण जो है तमोगुण से प्रभावित था, और विभीषण हम देखते हैं कि वो सत्वगुण में थे, सत्वगुणी थे। तो उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। तो यही है कि इस लीला का अभी एक दो श्लोक के बाद खत्म होने वाला है, ये लीला खत्म होने वाली है। तो इसका एक ही निष्कर्ष है, नतीजा एक ही है कि आज इस दुनिया में हम देखते हैं इस लीला का नतीजा क्या है, वो समाजवाद और पूंजीवाद, दो प्रकार के इस दुनिया में आज लोग हैं। तो हमें इनसे थोड़ा बचना चाहिए और हमें अपने भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो लगभग समय खत्म हो गया, किसी को कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की हरि बोल।